नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। भारत पे के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर अश्नीर ग्रोवर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेज विंग ने अश्नीर और उनकी पत्नी एवं अन्यों के खिलाफ विभिन्न जाली दस्तावेजों के आधार पर अनुचित तरीके से कंपनी के फंड का इस्तेमाल करने के मामले में ये केस दर्ज किया। बुधवार को अश्नीर ग्रोवर, उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर, दीपक गुप्ता, सुरेश जैन, श्वेतांक जैन समेत परिवार के सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। ईओडब्ल्यू ने रेजिलिएंट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड की शिकायत पर ये एफआईआर दर्ज की है। इसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि अश्नीर ग्रोवर, उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर और अन्य कर्मचारियों ने विभिन्न जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर कंपनी के धन का गबन किया। कंपनी ने उन पर 81 करोड़ की हेराफेरी का आरोप लगाया है। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, शिकायत के अनुसार इन आपराधिक कृत्यों से शिकायतकर्ता कंपनी को लगभग 81 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मामले की जांच के बाद बुधवार को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कर्ज का आकार बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने और सरकार से मिलने वाले बजट समर्थन पर उसकी बढ़ती निर्भरता को देखते हुए नीति आयोग ने प्राधिकरण का संस्थागत मूल्यांकन कराने का फैसला किया। सरकारी शोध संस्थान के रूप में कार्यरत नीति आयोग के विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय ने NHAI के कामकाज और सड़क परियोजना का मूल्यांकन करने के लिए एक तकनीकी सलाहकार चुनने के इरादे से निविदा जारी की है। देश में राजमार्गों के विकास एवं रखरखाव के लिए जिम्मेदार NHAI का कर्ज बोझ पिछले कुछ वर्षों में बेतहाशा रूप से बढ़ा है। मार्च 2014 में उस पर 23,797 करोड़ रुपए का कर्ज था, लेकिन मार्च 2022 तक ये बढ़कर 3.48 लाख करोड़ रुपए हो गया। वित्त वर्ष 2021-22 में NHAI के व्यय का इंतजाम आंशिक रूप से 57,350 करोड़ रुपए के बजट आवंटन और 65,000 करोड़ रुपए की बाजार उधारी से किया गया था। एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसकी ऋण शोधन कार्यवाही के लिए अर्जी देने की कोई योजना नहीं है। इसके उलट कंपनी ने $5 करोड़ के साथ उन विमानों को परिचालन में लाने का काम शुरू कर दिया है जो अभी उड़ान नहीं भर रहे। स्पाइसजेट का ये बयान ऐसे समय में आया जब विमान पट्टे पर देने वाली एक कंपनी ने एयरलाइन के खिलाफ ऋण शोधन समाधान के लिए आवेदन दिया। वहीं संकट में फंसी गोफर्स्ट की तरफ से स्वेच्छा से दायर दिवाला कार्यवाही के आवेदन को NCLT ने बुधवार को स्वीकार कर लिया। विमानन बाजार में हाल के घटनाक्रमों का हवाला देते हुए स्पाइसजेट ने कहा कि उसकी ऋण शोधन के लिए आवेदन देने की कोई योजना नहीं है। कंपनी ने बयान में कहा, हम किसी अन्य एयरलाइन की तरफ से दायर ऋण शोधन याचिका के कारण उत्पन्न किसी भी अटकल को खत्म करना चाहते हैं। एयरलाइन का ध्यान अपने कारोबार पर है और कोष जुटाने के लिए निवेशकों के साथ लगातार बातचीत जारी है। उल्लेखनीय है कि NCLT ने 8 मई को विमान पट्टे पर देने वाली कंपनी एयर कैसल आयरलैंड लिमिटेड की दिवाला याचिका पर स्पाइसजेट को नोटिस जारी किया था। इस मामले की सुनवाई अगले सप्ताह होनी है। गोदरेज एंड बायर्स की वाणिज्यिक इकाई गोदरेज इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स को बिजली, पारेषण, रेलवे और सौर परियोजनाओं से कुल 2000 करोड़ रुपए मूल्य के ऑर्डर मिले हैं। कंपनी ने बृहस्पतिवार को बयान में कहा कि गोदरेज इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजली ढांचा एवं नवीकरणीय ऊर्जा कारोबार को बिजली पारेषण, रेलवे और सौर परियोजनाओं से 2000 करोड़ रुपए से अधिक के ऑर्डर मिले हैं। इनमें देश भर में 400 केवी और 765 केवी के EHV उपकेंद्रों के लिए इंजीनियरिंग खरीद निर्माण, मुंबई में 220 केवी भूमिगत केबल के साथ एक GIS उपकेंद्र और नेपाल में 132 केवी उपकेंद्र की परियोजना शामिल है। सौर परियोजना खंड में कंपनी को पश्चिम बंगाल में 20 मेगावाट क्षमता के जमीन पर स्थित सौर संयंत्र का ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर अगले 3 वर्षों में अपने सौर EPC पोर्टफोलियो को सालाना 30% तक बढ़ाने और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लक्ष्य के अनुरूप है। कर चोरी के आरोपों को लेकर आयकर विभाग ने बृहस्पतिवार को मैनकाइंड फार्मा के दिल्ली स्थित परिसरों पर छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि विभाग कंपनी के दिल्ली और आसपास के परिसरों में तलाशी ले रहा है। दस्तावेजों की जांच की जा रही है, लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। कंपनी का शेयर मंगलवार को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हुआ था। कंपनी का IPO इसी साल आया है। कंपनी 4,326 करोड़ रुपए के IPO को पिछले महीने 15.32 गुना का अभिदान मिला किया था। वर्ष 1991 में गठित मैनकाइंड फार्मा विभिन्न फार्मास्यूटिकल्स उत्पादों की विनिर्माता कंपनी है। कंपनी के उत्पादों में मैनफोर्स कॉन्डोम, प्रेगा न्यूज प्रेगनेंसी डिटेक्शन किट और गैसोफास्ट सैशे शामिल हैं। 5 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों को आगामी 1 अगस्त से B2B लेन देन के लिए इलेक्ट्रॉनिक या ई इनवॉइस निकालना होगा। अभी तक 10 करोड़ रुपए का अधिक के कारोबार वाली इकाइयों को B2B लेन देन के लिए ई चालान निकालना होता है। वित्त मंत्रालय की 10 मई को जारी अधिसूचना के अनुसार B2B लेन देन के लिए ई चालान निकालने की सीमा को 10 करोड़ रुपए से घटाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया। यह व्यवस्था 1 अगस्त से लागू होगी। डेलॉइट इंडिया के भागीदार अप्रत्यक्ष कर लीडर महेश जयसिंह ने कहा कि इस घोषणा के साथ ई चालान के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों MSME का दायरा बढ़ जाएगा और ई चालान लागू करने की आवश्यकता होगी। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।